ॐ शांति, ॐ शांति। आज विशेष दिन है, हमारी दादी गुलजार का अव्यक्तारोहण दिवस 2021 में दादी जी ने अपना पुराना चोला त्याग अव्यक्त वतनवासी बने, तो आज उनके निमित्त भोग भी लगेगा और नीचे भी कार्यक्रम है। लेकिन यहाँ के भाई बहन तो नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि गाड़ी नहीं है, केवल डबल विदेशियों के लिए ही एक बस रखी है। यहाँ ही देखेंगे, 10 बजे से संस्मरण सुनाए जाएंगे हमारे वरिष्ठ भाई बहनों द्वारा, फिर 12 बजे भोग लगेगा। तो यहाँ भी अभी भोग लग रहा है मुरली के बाद, और आज हमारी दादी चंद्रमणि जी का भी दिन है। दादी चंद्रमणि ने 2011 में अपना देह त्याग किया था, तो उनका भी आज स्मृति दिवस है। सुनाई नहीं दे रहा जी? 97 में दादी चंद्रमणि ने शरीर छोड़ा था, बेंगलोर में छोड़ा था, लेकिन उनके पार्थिव देह को यहाँ ले आए थे और यहाँ ही संस्कार किया गया था। तो मुरली के बाद हल्दर भाई भी दादी गुलजार के निमित्त गीत गाएंगे और फिर भोग भी लगेगा। तब सुनते हैं प्यारे बाप दादा के माँ वाक्य। आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को कहा है कि बच्चे तुम्हें अति इंद्रिय सुख में रहना है। अति इंद्रिय सुख जो इंद्रियों से परे का सुख है, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बाबा ने कहा सच्चाई जरूर चाहिए। अंदर में सच्चाई सफाई होगी तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा, और सच्चाई सफाई का आधार है देही अभिमानी स्थिति। तो बाबा को सच बताओ, बाबा से छिपाओ नहीं। और बाबा ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है जो जिसके अंदर एकदम सच्चाई थी। हमारी दीदी निर्मला को बाबा कहते थे निर्मलाश्रम, बहुत ही सच्ची बाबा की बच्ची थी। अभी उन्होंने कुछ समय पहले ही शरीर छोड़ा, तो अभी ये साल तो लगता है कि पता नहीं किसका नंबर आ जाए। आज हमने सुना गीता बहन जो नीचे शांति वन में रहती थी, उन्होंने भी सुबह 2 बजे शरीर छोड़ा है, तो उसका भी हम उसको भी योगदान देंगे, तो फिर भोग भी लगेगा। तो सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य। आज 11/3/2026 है। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में अगर अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं किया वैसे तो ब्राह्मण जीवन में अति इंद्रिय सुख का अनुभव हर एक को होना चाहिए, पर अगर नहीं किया तो क्या समझना चाहिए, क्यों नहीं अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है? तो उत्तर है, जरूर सूक्ष्म में भी कोई न कोई पाप होते हैं, इसलिए अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं होता। जरूर सूक्ष्म में भी कोई न कोई पाप होते हैं, देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति कर नहीं सकते। अपने को गोप गोपियां समझते हुए भी अति इंद्रिय सुख की भासना नहीं आती तो जरूर कोई भूल होती है। इसलिए भूल हुई है तो क्या करो, इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। बाबा को लिखो, बाबा ये भूल मेरे से हुई। कई आते हैं, यहाँ लिखते हैं, बाबा के लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, बाबा को बता दिया तो सच बताओ। बाबा कहते इसीलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो, बाबा की जरूर श्रीमत मिलेगी, यहाँ टचिंग आएगी। ओम शांति। निराकार भगवानो वाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को, उनके नाम भल कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं, ढेर नाम है, सहस्त्र नाम कहते हैं शिव के हैं, ढेर नाम है, तभी तो विस्तार है। सहस्त्र माना 1000, कम से कम 1000 तो होंगे, जितने मंदिर शिव के उतने उसने उतने नाम, तो ढेर नाम है, तभी तो विस्तार है। भक्ति मार्ग का भी इतना विस्तार है क्योंकि शिव को अनेक नाम दे दिए हैं। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो, हे पतित पावन, तो जरूर नाम तो एक ही होगा ना। अब भगवान एक है तो उसका नाम तो एक ही होगा ना, पर बहुत ना और बहुत नाम तो चल न सके। अब इतने नाम दे दिए हैं तो ओरिजिनल नाम तो जो शिव है वो तो भूल ही गया है, अनेक नाम दे दिए, बहुत नाम चल न सके। शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ, रचयिता भी एक ही हुआ, बहुत नाम से तो मुझ जाए। तो बाबा ने क्या उदाहरण दिया है, अगर बहुत नाम उसके हैं तो मुझ जाए। जैसे बाबा के सामने एक बहन बैठी होगी, उसका नाम पुष्पा है, तो बाबा कहते जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है और उसके बदले मैं तुमको शीला कहूँ, शीला नाम कहूँ, तो तुम रेस्पॉन्ड करेगे भाई, यहाँ शीला को बुला रहे हैं तो मैं तो पुष्पा हूँ, नहीं ना, समझेंगे कि और किसी को बुलाते हैं। ये भी ऐसी बात हो गई, उसका नाम एक है परंतु भक्ति मार्ग होने कारण, बहुत मंदिर बनाने कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं। नहीं तो नाम तो हरेक का एक होता है, गंगा नदी को जमुना नदी तो नहीं कहेंगे, है ना, कहीं भी जाते हैं नदी बहती है, हम पूछते हैं ना इस नदी का नाम क्या है, ऐसे थोड़ी कहेंगे, या कोई भी नाम सोच लो, नदी का नाम है, तो गंगा नदी को जमुना नदी तो नहीं कहेंगे। कोई भी चीज का एक नाम प्रसिद्ध होता है, ये शिव नाम भी प्रसिद्ध है, शिवाय नमः गाया हुआ है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वो है ऊंचते ऊंच। मनुष्यों की बुद्धि में रहता है कि ऊंच से ऊंच निराकार को कहते हैं, उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से मुझ जाएंगे, रेस्पॉन्ड ही नहीं मिलता है। हाँ, एक मिसा कहानी सुनाते ना, चुटकुला है। कोई व्यक्ति डूब रहा था तो उसने अपने इष्ट को याद किया, श्री कृष्ण को याद किया। अब श्री कृष्ण तो आया नहीं बचाने, फिर श्री राम को याद किया। अभी वो जब तक तैयार हो आने लिए तो वो डूब रहा है। फिर गणेश को याद किया, फिर हनुमान को याद किया। बार बार अलग अलग नाम से याद कर रहा था, तो जिस एक को याद किया और उसने सोचा मैं जाता हूँ मदद करने, अभी दूसरे का नाम ले लिया तो पहला वाला रुक गया कि अब ये तो हनुमान का नाम ले रहा है, मैं कैसे जाऊं। तो आखिर तो कोई आया ही नहीं। हाँ, इतने नाम ले लिए। तो बाबा कहते हैं रेस्पॉन्ड ही नहीं मिलता और न उनके रूप को भी जानते हैं। बहुत नाम रखने से तो मुंह जाएंगे, रेस्पॉन्ड ही नहीं मिलता है और न उसके रूप को भी जानते हैं। तो बाप बच्चों से ही आकर बात करते हैं, शिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है। ओम नमो शिवाय कहते तो वो एक नाम शिव ठीक है। शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। शिव शंकर नाम अलग है, शिव अलग है, शंकर अलग है। जैसे बाबा मिसाल देते हैं लक्ष्मी और नारायण, ये अलग अलग नाम है। वहाँ नारायण को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे, सत्युग में नारायण का नाम श्री नारायण ही होगा, लक्ष्मी का नाम श्री लक्ष्मी होगा। तो श्री नारायण को लक्ष्मी नारायण तो नहीं कहेंगे। आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम भी रखते हैं, है ना, कईयों के नाम होंगे। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे, देवताओं का नाम एक ही था, लक्ष्मी केवल लक्ष्मी थी, नारायण सिर्फ नारायण था। ऐसे नहीं न श्री नारायण को लक्ष्मी नारायण कहेंगे। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे। राधे का नाम अलग, श्री कृष्ण का नाम अलग। यहाँ तो एक का ही नाम राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं क्रिएटर एक ही है, क्रिएटर एक ही है। एक व्यक्ति का नाम तो तीन तीन था। एक भाई का नाम था शिव राम कृष्ण भाई, हाँ शिव भी राम भी और कृष्ण भी। तो और उसको बड़ा नशा था, हाँ मेरे ये तीन नाम है शिव राम कृष्ण। और यही कहता था मुझे अगर बुलाना है तो तीनों नाम से बुलाओ। अगर कोई उसको केवल शिव कहता था तो कहता नहीं शिव राम कृष्ण, फिर राम को तो नहीं शिव राम कृष्ण, कृष्ण को तो नहीं शिव राम कृष्ण। तो मुझे कहा कि बहन जी आप इनको जब नाम बोलेंगे ना तो तीनों नाम बताना बोलना। मैंने कहा ठीक है तीनों नाम बोलेंगे। तो जब मैंने उनको कहा देखो आपका नाम तो कितना अच्छा है शिव राम कृष्ण, तो आपको तीनों के गुण भी होंगे आपके अंदर। हाँ तीनों के गुण होने चाहिए ना, तीन नाम रखे। और जैसे मैंने कहा तीनों के गुण भी होने चाहिए तो उसका सिर नीचे हो गया। बहन जी शर्मिंदा नहीं करो, ऐसे कह दिया शर्मिंदा नहीं करो। तो शर्मिंदा नहीं करो ये ऐसे क्यों कहा, क्योंकि गुण तो उनके है नहीं, पर नशा बहुत था कि मेरा नाम शिव राम कृष्ण है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो एक ही नाम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं क्रिएटर तो एक ही है, उनका नाम भी एक है, उनको ही जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है सितारा। फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा भी तो स्टार हुआ ना। चलो आत्मा सो परमात्मा कहा तो आत्मा एक स्टार है, तो परमात्मा भी तो स्टार हुआ ना, एक चमकता हुआ सितारा हुआ। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है, तो बातें तो बड़ी सहज है समझने की। तो बाप कहते हैं तुम पुकारते थे हे पतित पावन आओ, परंतु वो पावन कैसे बनाते हैं ये कोई भी नहीं जानते हैं। गंगा को पतित पावन ही समझ लेते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, तो बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था, कल्प पहले भी कहा था, क्या कहा था, मन मना भव माम एकम याद करो। हाँ, गीता के अक्षर है ना, मन मना भव माम एकम याद करो, सिर्फ नाम बदल दिया है, समझा है, श्री कृष्ण ने ये कहा है। बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है, पिता माना वर्षा जरूर मिलना है उनसे, ये अंडरस्टूड है। मन मना भव कहने की भी दरकार नहीं है, पिता को ये कहना नहीं पड़ता है बच्चे को मुझे याद करो, बच्चा तो पिता को याद करता ही है, उसको पता है पिता से वर्षा मिलना है। तो बाबा कहते हैं मन मना भव कहने की भी दरकार नहीं है, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं, इसीलिए कहना पड़ता है बाबा को भी कि मुझ बाप और वर्षे को याद करो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा वारिस आया, बच्ची के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वारिस आई, हाँ बच्चा बेटा होगा तो कहेंगे वारिस आया, बच्ची के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे, हाँ वो तो कहेंगे ना बेटी जो है वो पराया धन है, वो तो पराए धन घर चली जाएगी शादी के बाद, पर बेटा तो वारिस है। तो बच्ची के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, कहते भी हैं आत्मा एक स्टार है, फिर अंगूठे मिसल कैसे हो सकती है, हाँ अंगूठा माना अंगूठा, तो अंगूठे के मिसल कैसे हो सकते, वो तो एक बिंदु स्टार है। आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है, इन आंखों से देखने में नहीं आती, हाँ इन आंखों से नहीं देखने में आती, हाँ उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज है, चरम चक्षुओं से तो जो चरम चीजें हैं, जो प्रकृति की चीजें हैं वही दिखाई देगी, इन चरम चक्षुओं से अव्यक्त चीज तो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अव्यक्त चीज है। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया, चलो दिव्य दृष्टि मिली, साक्षात्कार में देखा एक ज्योति चमक रही है, पर एक सेकंड के लिए देखा फिर गायब हो गई, फिर आया तो दिव्य दृष्टि में चेतन देखने में आया फिर गायब हो गया, मिला तो कुछ भी नहीं, खाली देख लिया चलो दिव्य दृष्टि से, लेकिन वो तो गायब हो गया, उसने दिया क्या कुछ नहीं, तो गायब हो गया, मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, इसको कहेंगे थोड़ा सा खुश हो गए, साक्षात्कार किया, तो इसको बाबा क्या कहते हैं, इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख, केवल अल्प सुख मिला भक्ति का, उस समय खुशी हुई कि हाँ मैंने साक्षात्कार किया, अल्प सुख भक्ति का, ये है भक्ति का फल। जिसने भक्ति का फल क्या मिला, थोड़ा अल्पकाल का सुख मिला, जिसने बहुत भक्ति की है उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से भी फल मिलना होता है। जो भक्ति बहुत की तो भक्ति के बाद ज्ञान, वो तो अल्पकाल का सुख मिला लेकिन भक्ति के बाद ज्ञान, तो फिर भक्ति के बाद वो ज्ञान भी लेगा, तो उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु भक्ति का फल है, भक्ति का फल क्या है, ब्रह्मा सो विष्णु, ये भक्ति का फल है, विष्णु के रूप में मिल रहा है भक्ति का फल। कौन सा फल, विष्णु के रूप में राजाई का फल। विष्णु व श्री कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा, बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है, ऐसे नहीं कि एक ही रूप की भक्ति की, कितनी भक्ति में तो कितने देवताएं हैं, तो भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की होगी, भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की होगी। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता है। साक्षात्कार अलग चीज है, ज्ञान योग अलग चीज है। नौधा भक्ति से साक्षात्कार हुआ। अभी साक्षात्कार न भी हो तो भी हर्जा नहीं है, है क्या इच्छा साक्षात्कार की? अभी तो ज्ञान मार्ग में आ गए, भक्ति मार्ग में इच्छा होती है साक्षात्कार की। यहाँ पर ज्ञान तो मिल गया, है किसी को इच्छा साक्षात्कार की? है तो हाथ उठाओ, हाँ करा देंगे बाबा साक्षात्कार, इच्छा होगी तो। किसी को नहीं है? अच्छा, तो बाबा कहते हैं नौधा भक्ति से साक्षात्कार हुआ, अभी साक्षात्कार न हो तो भी हर्जा नहीं। एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं और संग बुद्धि का योग हटाओ। और संग बुद्धि का योग हटाओ, देह से भी हटाए बाप को याद करो। जैसे किसका मिसाल बाबा देते हैं, देह से भी हटाए बाप को याद करो, जैसे आशिक माशुक काम भी करते रहते हैं परंतु दिल माशुक से लगी रहती है। तो बाप भी कहते हैं माम एकम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। अभी तुम जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगाए। हाँ, सारा कल्प तो उतरे ही है ना, जैसे नहीं कि सतयुग में कोई आगे चढ़ते हैं, उतरना ही होता है। सारा कल्प लगा उतरने में, सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है, सतो से फिर तमो बन जाते हैं, फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं, एकदम तमो से सतो तक जाने लिए जंप कराते हैं। सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान, सेकंड में जीवन मुक्ति। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े, बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं। अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं। अब बाबा तो कहते रहते बच्चे मुझे याद करो, देश है देश संबंध सब भूलो, तो बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चे खुद अनुभव करते हैं। बाबा कहते तो हैं लेकिन बरोबर है तो डिफिकल्ट, हर वक्त बाबा की याद रहे ये डिफिकल्ट है। कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते ही नहीं है, कुछ भूल की है तो बाबा की याद भी रह नहीं सकती है। तो फिर बाबा कहते कोई तो कोई भूल की है तो बाबा को बताते हैं, और कोई तो बताते भी नहीं है। अपनी अवस्था का बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते हैं तो वर्षा कैसे मिलेगा? कायदे सिर याद नहीं करते हैं। क्यों कायदे सिर याद नहीं करते हैं? क्या समझते हैं? समझते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ही हैं, हम तो है ही है शिव बाबा के, और तो किसके है ही नहीं, तो है ही बाबा के, तो खास याद क्यों करते नहीं करते? समझते हम तो शिव बाबा के हैं ही, याद न करने से फिर गिर पड़ते हैं। है ही ऐसे नहीं समझना चाहिए, मेहनत करनी है याद करने की। याद न करने से गिर पड़ते हैं, बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है। अटेंशन देना पड़ता है, जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती है कि याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। सब तो एक जैसे दौड़ी पहन नहीं सकते, लॉ नहीं कहता है। हाँ, दो का एक एक एकदम फिनिश एकदम साथ हो ये हो ही नहीं सकता। रेस में दौड़ते ना तो भले फिर भी 0.1 सेकेंड थोड़ा बाद में हो जाएगा, भले पॉइंट भी हो तो भी सेकंड नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए एक फर्स्ट तो केवल एक ही आएगा। सब तो एक जैसे दौड़ी पहन नहीं सकते, लॉ नहीं कहता है, रेस में भी जरा सा फर्क पड़ जाता है, नंबर वन फिर प्लस में आ जाते हैं, चलो उनको भी फर्स्ट प्राइज दे देंगे, बस खाली जरा सा पांव थोड़ा पीछे था, उस पहले वाले का पांव आगे था, तो न फिर प्लस में आ जाते हैं। यहां भी बच्चों की रेस है, तो मुख्य बात है याद करने की। ये तो समझते हो हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं, बाप ने डायरेक्शन दिया है, अभी पाप करने से वो 100 गुना हो जाएगा। हाँ, पाप नहीं करो नहीं तो वो पाप का 100 गुना दंड मिलेगा। बहुत है जो पाप करते हैं पर बताते नहीं हैं, फिर वृद्धि होती जाती है, सच नहीं बताते बाबा को तो वृद्धि होती जाती है, फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं, सुनाने में लज्जा आती है, सच न बताने से अपने को धोखा देते हैं। बाबा को सच नहीं बताया तो अपने को धोखा देते हैं। कोई को डर लगता है बाबा हमारी ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे, कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं, कोई तो छोटी भूल की तो भी सुनाने आ जाते हैं, परंतु बाबा उनसे कहते हैं, हाँ बाबा कहते अच्छा बच्चे चलो भूल की बताया ठीक है। पर कोई तो फिर ऐसे हैं बाबा, परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी करते हैं, तुमने तो छोटी बात भी बता दी चलो कोई बात नहीं, परंतु बड़ी बड़ी भूलें भी अच्छे अच्छे बच्चे भी करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं है, माया पहलवानों को ही चक्र में लाती है, इसमें बहादुर बनना पड़े, झूठ तो चल न सके। चलो बाबा के आगे झूठ भी बोला तो किसका नुकसान किया, बाबा को तो कोई नुकसान नहीं होना है ना, बच्चे को ही नुकसान होना है, तो बाबा कहते हैं झूठ तो चल न सके, सच बताने से हल्के हो जाएंगे। कितना भी बाबा समझाते हैं फिर भी कुछ न कुछ चलता ही रहता है, अनेक प्रकार की बातें होती है। अब जबकि बाप से राज्य लेना है तो बाप कहते हैं कि बुद्धि और तरफ से हटाओ, राज्य लेना है बाबा से तो और तरफ से बुद्धि हटाओ, बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है, 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, तुम अपने जन्मों को भी जान गए हो, कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है, माना डिफेक्टेड शरीर होता है जन्म लेते समय तो उसको डिफेक्टेड कहा जाता है ना, कई बच्चे पैदा होते हैं तो डिफेक्टेड है तो उसको डिफेक्टेड कहा जाता है, कुछ न कुछ उसमें नुक्स है, अपने कर्मों अनुसार ही ऐसा होता है, ऐसा शरीर पैदा हुआ, बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं, हर एक मनुष्य जो बच्चा भी पैदा हुआ तो 2 हाथ होंगे 2 पैर, पर कईयों को माना 5 उंगली के बोले 6 उंगली भी हो जाती है, कईयों का क्या हो जाता है, तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। तो बाप समझाते हैं कि एक तो अभी इतना बाबा ने बताया तो अभी बाबा सार क्या बताते हैं, एक तो पवित्र रहना है और दूसरा क्या करना, एक तो पवित्र रहना है, दूसरा एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ बाप झूठ पाप कुछ नहीं करना है, पवित्र भी रहना है और झूठ पाप कुछ नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो एक से थोड़ी भूल हुई, बाबा किसी का मिसाल देते हैं, एक था उससे थोड़ी भूल हुई और आया बाबा के पास आया और आकर के बाबा को बताया बाबा ये भूल मैंने की है, बाबा क्षमा करना, बाबा को कहा, बाबा क्षमा करना, ऐसा काम फिर कभी नहीं करूंगा। बाबा ने उसको कहा, अभी बाबा ने उसको क्या कहा, बाबा ने कहा ऐसी भूले तो बहुतों से होती है, ये तो तुमने बहुत छोटी भूल की है, ऐसे भूले तो बहुतों से होती है, तुम तो सच बताते हो, कोई को सुनाते भी नहीं है। हाँ, दूसरे तो कई हैं जो ऐसी ऐसे भूले करते हैं परंतु सुनाते भी नहीं है। कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहां बुद्धि जाती नहीं। हाँ, बाबा के भिन्न भिन्न बच्चे हैं तो कोई तो बताते भी नहीं, कोई तो छोटी छोटी भूल अगर हुई तो बताने आते हैं, तो बाबा के पास बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास बच्चियां भी है, कभी भी कहां बुद्धि जाती नहीं। तो किसको याद किया बाबा ने? हाँ, निर्मला दीदी को। जैसे बंबई में निर्मला डॉक्टर है, तभी वो बॉम्बे में रहती थी साकार बाबा के समय, और बाबा ने उनको कहा था कि सेंटर खोलो, क्योंकि पिता ने इसके लिए डाउरी का धन रखा था कि शादी करेगी तो ये उनको डाउरी देंगे, लेकिन उसने कहा मैं तो नहीं करूंगी। तो बाबा ने उसको राय दी कि पिता को कहो कि जो पैसा मेरे लिए रखा है उससे मकान लेकर के दो, और वो मकान हाँ लेकर दो तो मैं सेंटर खोलूं। तो जैसे बंबई में निर्मला डॉक्टर है नंबर वन, तो सचमुच सेंटर खोला उसने कांदीवली में, तो वहाँ सेंटर खोला, तो नंबर वन है। बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसीलिए दिल पर चढ़ी हुई है। ऐसे और भी बच्चियां हैं तो बाप समझाते हैं सिर्फ सच्ची दिल से बाप को याद करो, कर्म तो करना ही है, बुद्धि योग बाप से लगा रहे, हाथ काम तरफ और दिल यार तरफ, कर कार दे दिल यार दे, हाथों से काम करो दिल बाबा के तरफ हो। वो अवस्था पिछाड़ी की है, पिछाड़ी की है, पिछाड़ी तो लगभग आई गई ना, वो अवस्था पिछाड़ी की है जिसके लिए ही गाते हैं। क्या गाते हैं? अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, तो इस अवस्था को पाते हैं। अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, इस अवस्था को पाते हैं। हाँ, जो पाप कर्म करते हैं उनकी ये अवस्था नहीं होती है, अति इंद्रिय सुख का वो अनुभव नहीं करेंगे अगर पाप कर्म करते हैं तो उनकी अवस्था नहीं होती। बाबा अच्छी तरह जानते हैं, तब तो भक्ति मार्ग में भी अच्छे व बुरे कर्म का फल मिलता है, बाबा जानते हैं सबका हिसाब किताब, तो इसीलिए अच्छे व बुरे कर्म का फल मिलता है, देने वाला तो बाप है ना। जो किसको दुख देंगे तो जरूर दुख भोगेंगे, जैसा कर्म किया है तो भोगना ही होगा। यहाँ तो बाप खुद हाजिर है, समझाते रहते हैं, हाँ समझाते रहते हैं, फिर भी ये गवर्नमेंट है, ऑलमाइटी गवर्नमेंट है, धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के साथ धर्मराज भी हुआ ना, इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं, ऐसे नहीं कि बाबा तो जानता है, हाँ इसीलिए बाबा को बताने की जरूरत नहीं, हो तो जानता है। हम शिव बाबा से दिल अंदर क्षमा लेते हैं, कई ऐसे समझते ना, बाबा तो जानते हैं, चलो दिल अंदर क्षमा लेते हैं, कुछ भी क्षमा नहीं होगा, बाबा सीधा कहते कुछ क्षमा नहीं होगा, पाप कभी भी किसका छिपा नहीं रहेगा। पाप करने से दिन प्रतिदिन पाप आत्मा बनते जाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कोई भूल हुई तो सच बताओ, सच बताओ तो बाबा आधा माफ कर देंगे, छिपाओ नहीं, क्योंकि छिपाएंगे तो वो भूल बढ़ती जाएगी। और अगर कोई अच्छा काम किया ना तो वर्णन नहीं करो, दुनिया में क्या है, अच्छा कुछ किया तो वर्णन करेंगे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और भूल हुई तो छिपाएंगे, होना चाहिए उसका अपोजिट। भूल की तो सच बता दो, और अच्छा काम किया तो वर्णन नहीं करो, दूसरे आपकी महिमा करे, आपको नहीं ये तो बाबा ने करा है तो उस बात को बढ़ाओ नहीं। तो इसलिए देखो बाबा कहते हैं, एक तकदीर में नहीं है, पाप करने से दिन प्रतिदिन पापात्मा बन जाते हैं, तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसा ही होता है, रजिस्टर खराब हो जाता है। एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते हैं तो समझा जाता है ऐसा काम करते ही रहते होंगे, सच बताया नहीं, पकड़ा गया मान लो तो ऐसा काम तो करते ही रहते होंगे। झूठ कभी छिप नहीं सकता, बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं। हाँ एक कहावत है, कौन सी कहावत है, कख का चोर सो लख का चोर, कख का चोर सो लख का चोर। हाँ एक एक कख माना एक तिनका, तिनका भी अगर उठाया तो फिर कभी एक लाख भी उठाएंगे, तो चलो अभी तो थोड़ा उठाया फिर एक लाख भी उठा सकते हैं। तो कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। इसीलिए कहना चाहिए ना कि हमसे ये दोष हुआ, जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं हाँ बाबा भूल हो गई, बाबा ने पूछा पता चला बाबा को, फिर बाबा ने उनसे पूछा तो कहेंगे हाँ बाबा भूल हो गई। आप ही खुद क्यों नहीं बताते, आप ही खुद क्यों नहीं बताते। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेगी। कहाँ से चिट्ठी आती है तो पूछो क्या जवाब देना है। अब यज्ञ के अंदर भी किसी की को चिट्ठी आती थी तो बाबा के पास ले जाते, बाबा ये चिट्ठी आई, मम्मा को बाबा रेफर करते थे तो मम्मा ये सब आते देखती थी, तो कहाँ से चिट्ठी आई ये पूछो क्या जवाब देना है। सुनाने से श्रीमत मिलेगी, बहुतों में कोई गंदी आदत है तो वो छिपाते हैं, कोई को लौकिक घर से मिलता है, बाबा कहते हैं भल पहनो तो फिर रेस्पॉन्सिबल बाबा हो गया, बाबा ने कहा भल पहनो तो फिर रेस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। अवस्था देखकर फिर किसको कहता हूँ यज्ञ में भेज दो, अब किसको कुछ मिला तो उसने बाबा को लिखा बाबा लौकिक से ये मिला है, तो कईयों को बाबा कहेंगे बच्चे भले पहनो, हाँ भले यूज करो, तो परंतु उसकी अवस्था बहुत अच्छी है, परंतु कई ऐसे हैं हाँ जिनकी अवस्था अच्छी नहीं है, वो पहनेंगे तो वो याद आएगा, तो फिर बाबा कहेंगे नहीं यज्ञ में भेज दो। तो किसको कहता हूँ यज्ञ में भेज दो, तुमको बदली करके दे तो ठीक है, हाँ नहीं तो उस आत्मा की याद आएगी, तो तुमको बदली करके दे तो ठीक है नहीं तो वो याद रहेगा। तो बाबा बहुत खबरदार करते हैं, मार्ग तो बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है, बाबा शिक्षा ही देंगे कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा, लौकिक में लिखना है तो ऐसे लिखो तो तीर लगेगा। परंतु देह अभिमान बहुतों में है, श्रीमत पर नहीं चलते, चलने से अपना खाता खराब करते हैं, श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं, श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा है। रास्ता कितना सहज है, सिर्फ याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो। बूढ़ियों के लिए कहते हैं हाँ बाबा, बूढ़ियां कहती बाबा ये सब ज्ञान की इतनी गुहे बातें हमको याद नहीं रहती, कुछ नहीं समझ में आता है, तो फिर बूढ़ियों के लिए तो बाबा कहते हैं सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो बस, और बातें भूल जाओ, और बातें याद नहीं रहती कोई बात नहीं। प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते हैं, पर ये बूढ़ियों को तो नहीं कहेंगे ना, हाँ बाबा कहते हैं, बाबा तो और बच्चों को कहेंगे, बूढ़ियों को यही कहेंगे बस बाप को और वर्षे को याद करो। प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते, फिर भी जो छिपाते हैं उनसे तो ऊंच पद पा सकते हैं, चलो और सेवा नहीं कर सकते हैं, वाचा की सेवा यहाँ वहाँ नहीं जा सकते हैं, बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं, तो चलो बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो। परंतु उनसे तो बहुत अच्छे हैं वो, जो सेवा तो खूब करते लेकिन छिपाते हैं, झूठ भी बोलते हैं, पाप भी करते हैं और छिपाते भी है, भले सेवा करते हैं, तो उनसे तो बूढ़े अच्छे हैं जो कम से कम पाप तो नहीं करते हैं, बाबा को याद करते हैं, भले सेवा नहीं भी कर पाते स्थूल या वाणी की। बाप का फर्ज है समझाना, जो फिर ऐसा न कहे, बाबा तो समझाते हैं तो फिर ऐसा नहीं कहे कि हमको तो पता ही नहीं था, पता ही नहीं था हमको, इसलिए बाबा पहले से बता देते हैं। बाबा सब डायरेक्शन देते हैं, भूल को झट बताना चाहिए, हर्जा नहीं फिर नहीं करना, ठीक है बाबा को बता दो फिर हल्के हो जाओ, परंतु फिर नहीं करो भूल, हर्जा नहीं फिर नहीं करना, इसमें डरने की तो बात ही नहीं है। प्यार से समझाया जाता है, बाप को बताने में कल्याण है, बाप फिर पुचकार दे प्यार से समझाएंगे, पुचकार माना ऐसे करते ना, इसको कहते हैं पुचकार, तो फिर बाबा कहते हैं बाप प्यार से समझाएंगे, पुचकार दे प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते हैं। इनकी दिल से गिरा, ब्रह्मा बाबा की दिल से गिरा, तो शिव बाबा की दिल से भी गिरा। ऐसे नहीं कि हम तो डायरेक्ट ले सकते हैं कुछ भी नहीं होगा, जितना समझाया जाता है बाप को याद करो उतना बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। ये सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में फिर शास्त्र बनते हैं। इसमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है, गाया हुआ भी है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो भगवान ने गाई, बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं, गीता हो गई मात पिता, गीता माता, शिव बाबा पिता, बाकी तो सब हुए बच्चे। गीता में ही भगवानुवाच है, श्री कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे, श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं, श्री कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे। देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है, साईं बाबा ने कहा इनको देवता भी नहीं कहेंगे, दैवी संप्रदाय कहेंगे श्री कृष्ण को, देवताओं को दैवी संप्रदाय कहेंगे। बाकी देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है तीन, भगवान तो देवताओं से भी ऊंचा ठहरा, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा, बिल्कुल क्लियर है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ऐसे तो कभी कहते नहीं श्री कृष्ण द्वारा स्थापना, स्थापना के लिए निमित्त तो ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना ऐसे तो नहीं कहते श्री कृष्ण द्वारा स्थापना, ब्रह्मा का रूप दिखाया है। किसकी स्थापना ब्रह्मा द्वारा, किसकी स्थापना, विष्णुपुरी की स्थापना। ये चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए, ब्रह्मा सो विष्णु, बाबा ब्रह्मा सो विष्णु का चित्र कहते हैं, चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं, बाप बिगत दादे का वर्षा मिल नहीं सकता, ग्रैंडफादर का वर्षा पिता द्वारा ही मिलता है। जब कोई भी मिलता है तो ये बताओ कि शिव बाप कहते हैं माम एकम याद करो, अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला मंजिल बहुत ऊंची है इसीलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है, श्री मत पर चलने में ही फायदा है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरा, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड, एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं, मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूजन की मूड, कभी टेंशन की मूड, कभी अटेंशन का झूला, तैश तैश। लेकिन संगम युग प्रालब्ध युग है, न कि पुरुषार्थी। मूड बदले फिर पुरुषार्थ करो मूड को ठीक करने लिए, तो ये तो प्रालब्ध युग है न कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के गुण, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की स्टेज। बाप समान बनना है ना, तो जो बाप की स्टेज वही बच्चों की, जो बाप के गुण वो बच्चों के। यही है संगम युग की प्रालब्ध। क्या है संगम युग की प्रालब्ध? जो बाप का वही बच्चों का। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तो कहेंगे तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप बनो। स्लोगन, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो की अंतर्गत फेथफुल की पहली निशानी है फेथफुल। हाँ, माना बाबा के साथ लॉयल रहना, वफादार रहना, आज्ञाकारी रहना फेथफुल की निशानी है। हर सेकंड हर कदम श्री मत पर एक्यूरेट चलना, एक्यूरेट मूर्ति बनना, एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। हथौड़ी लगती है ना, हथौड़ी या छेनी से मूर्ति बनाते ना, तो पत्थर को तराशते हैं, तो एक्यूरेट मूर्ति मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना, वो हथौड़ी लगना। हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो हैमर खाने के अनुभवी हो गए हो, अनुभवी हो गए ना। हमारी दादियां हमारे जो वरिष्ठ हैं उन्होंने कितना सहन किया होगा, जो भी पुराने हैं उन्होंने तो बहुत सहन किया है। तो आप लोग तो हैमर खाने के अनुभवी हो गए हो, नथिंग न्यू। खेल लगता है ना, दादियों को बाबा ने कहा होगा, खेल लगता है ना। देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो, हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा। मूड बदलने वाले नहीं, फेथफुल। तो इसीलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा। नोट, आज हम सब की अति प्रिय बाप दादा के नैनों की नूर अपने दिल तख्त पर बाप दादा को बिठाने वाली मीठी दादी गुलजार जी के पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने उनके द्वारा प्यारे अव्यक्त बाप दादा की जो पालना मिली है उस पालना का रिटर्न देने के लिए शुभ संकल्प लें। क्या रिटर्न देंगे हम, अव्यक्त बाप दादा से भी कितनी पालना मिली है तो क्या रिटर्न दें। रिटर्न देने लिए शुभ संकल्प लें कि जैसे दादी जी ने हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सदा अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सबको दुआएं दी और दुआएं ली, एक्यूरेट पाठ बजाया, ऐसे हम सभी उनके पद चिन्हों पर चलकर उन्हें अपने स्नेह सुमन अर्पित करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ये भी एक अनाउंसमेंट है, मैं जिसका भी बोलना, एक एक्स्ट्रा एडिशन है।
क्या है? अच्छा, फॉरेनर्स का। ओके,
गीतावेन का योग भी कराना है।
अच्छा अच्छा, तो पहले तो कहाँ है हल्दर भाई, कहाँ है हल्दर भाई? गीत गाएंगे दादी के लिए?
पहले योग करा देते
हैं। अच्छा, पहले योग कराएंगे।
पहले आप ये सुनाना है तो सुना।
ये फॉरेनर्स का प्रोग्राम है ना, सो ये डबल विदेशी।
तो के बाद सुनाना, वो संदेश फिर लेट हो जाएगा।
संदेश के बाद सुनाएंगे। आई विल क्विकली अनाउंस डबल फॉरेनर्स प्रोग्राम, सो ऑल दोज डबल फॉरेनर्स हु आर गोइंग टू शांति वन प्लीज रेज योर हैंड अगेन। So about 25 I heard. So if you are going to Shantivan, then please come to the transport department by 9, latest 9:15. The bus will leave by 9:15 and you can go down to Shantivan, go directly to Dadi Gulzar's Shakti Bhavan, where you will meet Neelu Ben. And she will give you toli and blessing, so from Dadi. And then you will also go to the Avyakt Lok, Dadi's memorial, and then go to the class, because 11:30 you should reach the hall, and then bhog will be offered after that. At 12 o'clock, Mohini Didi is going to offer bhog. Lekin baki sab bhai behno ko to जा नहीं सकेंगे क्योंकि बसें नहीं है, केवल डबल विदेशियों के लिए एक बस मिलेगी जो 9:15 जाएंगे। यहाँ दिखाएंगे, जो भी नीचे प्रोग्राम होगा वो यहाँ ट्रांसमिशन करेंगे, बड़े स्क्रीन पर आप देख सकेंगे, इसीलिए कोई भी नीचे नहीं जाएंगे सिवाय डबल विदेशियों के। बट देर इज ऑल्सो अ प्रोग्राम फॉर डबल फॉरिनर्स, 10 to 10:15 मेडिटेशन, and 10:15 to 12:15 there are different workshops. Please you can see from the notice board. We will put outside. 10:15 to 12:15 workshop by Sister Petra of Netherlands in training center room number 3. Also 10:15 to 12:15 workshop by Sister Sharona in the meditation hall. 10:15 to 12:15 workshop by Brother Vijay of Trinidad in the Harmony Hall of Gyan Sarovar. Details are inside. Please, you can see the notice board and decide in which workshop you wish to go. Then 4:15 to 5 movements and exercise in Meditation Hall, Gyan Sarovar. 4:30 to 5:15 p.m. Murli Study Circle by Brother Demo from Australia in training center room number 1. Then 6 to 7:30 meditation with Dadi Gulzar in Harmony Hall. Okay, and if you are going to Shanti One, please, you must have your badge on, double foreigner's badge. Don't forget to wear your badge. And buses will take you down, and then, as I mentioned, all that. And after bhog, you will have lunch in Manmohini One, where double foreigners are also having lunch. So lunch in Manmohini One, and then you will go back from there to Gyan Sarovar or to Pandav Bhavan. Okay? And those who newly arrived yesterday, double foreigners? Okay. Those who newly arrived yesterday or shifted from Shanti One or Manmohini One, who shifted from Manmohini One yesterday? for Shantivan? No one. So please come to deposit office to submit government form C and give your room number also in the deposit office. Om Shanti. तो अभी जैसे आपको शुरू में बताया हमारी अति प्रिय गीता बहन जो मेरे साथी थी राजयोग शिविर कराने में पूरी मददगार थी आप ने कैसे बाबा की पूरी सेवा की हड्डी सेवा की लेकिन डायलिसिस पर थी और काफी वीक भी हो गई थी तो अचानक तो नहीं कहेंगे दो तीन दिन से तो उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी तो वेंटिलेटर पर थी क्योंकि ब्रेन हेमरेज भी हो गया और हार्ट अटैक भी हुआ साथ साथ तो कोमा में ही थी और आज सुबह 2 बजे उन्होंने अपना देह त्याग किया नीचे ट्रॉमा सेंटर में तो अभी तो कब अंतिम संस्कार होगा वो तो अभी कुछ सूचना नहीं है लेकिन हम सब उस आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद दादी गुलजार के निमित्त हमारे हल्दर भाई गीत गाएंगे शांति तो 3 मिनट हम सब पहले गीता दीदी को श्रद्धांजलि देंगे फिर तो भोग भी लगना है दादी के निमित्त ओम शांति
से हमको मिलाओ बाबा वाली दादी बाबा से हमको मिलाओ, अव्यक्त लोक में आकर अव्यक्त मिलन मनाओ। बाबा वाली दादी दादी मीठी दादी दादी प्यारी दादी, खुश रहो खुशी बांटो हर दम ये कहती थी। रूहानी दृष्टि देकर सबको बाबा से मिलाती थी। मेरा बाबा मेरा साथी आओ, मेरा बाबा मेरा साथी आओ, फिर से ये दोहराओ, अव्यक्त लोक में आकर अव्यक्त मिलन मनाओ। बाबा वाली दादी समर्पण सादगी जीवन सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। बाप दादा को तुमने कर दिया साकार है। दिव्यता और संपूर्ण पवित्रता, दिव्यता और संपूर्ण पवित्रता ये शक्ति भर जाओ, अव्यक्त लोक में आकर अव्यक्त मिलन मनाओ। बाबा वाली दादी मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। कथनी करनी एक समान तुम सा और है न कोई। आज भी याद आए वो पल, आज भी याद आए वो पल, तुम भी तो आ जाओ, अव्यक्त लोक में आकर अव्यक्त मिलन मनाओ। बाबा वाली दादी बाबा से हमको मिलाओ, बाबा वाली दादी बाबा से हमको मिलाओ, अव्यक्त लोक में आकर अव्यक्त मिलन मनाओ। बाबा वाली दादी, बाबा वाली दादी, बाबा वाली दादी, बाबा वाली दादी।
ओम शांति। आज का दिन हम बच्चों के लिए कितना ना विशेष दिवस है। हमारी आदरणीय दादी गुलजार ने हम सबको बाबा से मिलाया, बाबा से वरदान दिलाए, दृष्टि के द्वारा साकार बाबा का अनुभव कराया और टोली से सबको भरपूर किया। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं, साकार बाबा के अविक्त होने के बाद भी बाबा दादी के द्वारा बच्चों से मिलने आते रहे और हमारी सभी दादियां प्यारे बाबा समान हम सबको वैसा ही अनुभव कराती रही। जैसा कि आपने सुना, चंद्रमणि दादी और चंद्रमणि दादी के अंदर अनेक विशेषताएं थी। एक विशेषता बाबा ने जो कहा है उसकी श्रीमत का पूर्ण पालन करना, और चंद्रमणि दादी को बाबा कहते थे शेरनी, क्योंकि चंद्रमणि दादी को जिन्होंने देखा वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, थोड़े हैं, बाकी सब अव्यक्त पालना के हैं। उनको हमेशा बाबा कहते थे शेरनी, पंजाब की शेरनी, क्योंकि पंजाब में रह करके बहुत सेवाएं की। पंजाब में शुरू शुरू काफी विघ्न आए, लेकिन दादी ऐसे खड़ी हो जाती थी, किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि दादी के सामने आए और दूर से देखकर बाहर चले जाते थे। और प्यारी गुलजार दादी की तो विशेषताएं कितनी हैं, शांत मूर्त, और अपनी शांति के वाइब्रेशन द्वारा सबको अनुभव कराती थी। तो आज हम सब मिलकर के वतन में जाएंगे, प्यारे बाबा को, गुलजार दादी को और चंद्रमणि दादी जी को भी भोग स्वीकार कराएंगे, और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। ओम शांति। ये मेडिटेशन के अमृत वेला युग के बाद एक मोबाइल मिला है, जिस किसी का हो ले सकते हैं, फिर बाद में रिसेप्शन में लेना। अब स्टेज के पीछे ले सकते।
बन जा बाबा की सच्ची लगन से, बन जा बाबा की तू गली बहार, उड़ जा प्यारी वतन में नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के
छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
विशेष अव्यक्ति दिवस पर सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों की याद प्याले के जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में चारों ही तरफ सब भाई बहनों के स्नेह की भावनाओं से बहुत सुंदर डेकोरेशन थी और हर डेकोरेशन के अंदर कुछ न कुछ राज दिखाई दे रहा था और बाबा भी पूरी डेकोरेशन को ध्यान से देख रहे थे और उसको देख करके बाबा ने कहा, बच्ची ये डेकोरेशन कितनी सुंदर तो है लेकिन कितने भाग्यशाली हैं। तो मैं सोचने लगी, बाबा ने कहा ये सब बाबा के बच्चे विशेष इस रथ के द्वारा जो अलौकिक जन्म हुआ है, एक एक बच्चा अनेक वरदानों से भरपूर है और वरदानों से ही अभी तक आगे बढ़ रहे हैं। इतने में क्या देखती हूँ हर डेकोरेशन के अंदर बाबा के ढेर बच्चे देश विदेश के दिखाई देने लगे और सब बाबा को देखते हैं और बाबा को कहते हैं हमारी दादी कहाँ है। बाबा ने कहा ध्यान से देखो, जैसे कहा हमारी दादी कहाँ है तो बाबा के सामने ही अव्यक्त बाप दादा का स्वरूप दिखाई दिया और उस अव्यक्त बाप दादा के स्वरूप के द्वारा चारों ही तरफ लाइट की किरणों से सबके पास वरदान और वरदानों का एक भंडार सा पहुंचता, जैसे सबकी झोली भरती जा रही थी। तो बाबा ने सबको कहा कि अब मिलन बना लिया तो मुस्कुराते हैं। तो एक सेकंड में बाबा ने क्या किया, खुद अलग और गुलजार दादी को राइट साइड में खड़ा किया और दादी को बोला देखो बच्ची ये सब कौन है। तो दादी मुस्कुराते हुए शांत स्वभाव से धीरे से कहती है बाबा ये तो सब आपके बच्चे हैं। बाबा ने कहा देखो ये बच्ची निमित बनी लेकिन निमित बनने के बावजूद भी हर समय बाबा और हर समय निर्माण शांत चित हर्षित मुख चेहरे द्वारा सबको अनुभव कराती रही। बाबा ने कहा कि सबको ध्यान से देखो, फिर भी दादी न्यारी और प्यारी और पूरा ही ब्राह्मण कुल जो है दादी को घेर के और चारों ही तरफ ऐसे खड़े हो गए तो जैसे अविक पाप दादा हर एक के पास दूर दूर तक टोली और वरदान देते थे, ऐसे ही साकार बाबा और अव्यक्त बाबा दोनों मिलकर के सबके पास हाथ की हस्त कमल के द्वारा सबको वरदान दे रहे थे, लाइट से सबके ऊपर वरदान पहुंच रहे थे। तो मैंने कहा दादी सब आपको मिस करते हैं। कहते मिस क्यों करते हैं, बाबा साथ हैं, बाबा का पाठ गुप्त रीति से चल रहा है और आप सब बच्चे भी बाबा के कार्य के अंदर गुप्त और प्रत्यक्ष रीति से बाबा के कार्य को संपन्न बनाने में लगे हैं, तो देखकर मुझे भी खुशी होती है और बाबा को भी खुशी होती है कि बच्चे कितने अथक पुरुषार्थ करके सेवा को आगे और स्वयं को संपन्न बनाने में लगे हुए हैं। फिर तो जैसे बाबा ने अपने हाथ से वो भोग की थाली दादी के पास रखी, लेकिन दादी को फिर वही रूप दिखाई देता था अव्यक्त बाप दादा का। और दादी ने क्या किया, वो टोली भोग को खोलते ही सबके पास ऐसे भेजा जैसे अव्यक्त बाप दादा अभी भी हमारे सामने हैं और बच्चों की पालना कर रहे हैं। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा के अंदर राज है कि बाप का अव्यक्त होना और अव्यक्त पार्ट जो चला है, जिसे इस बच्ची ने अपने कंधे पर लेकर के उस पार्ट को बहुत ही एक्यूरेट बजाया है। फिर क्या देखती हूँ कि दादी के सामने बहुत सी सुंदर सुंदर मालाएं थे, कार्ड थे, बहुत सी चीजें थी। तो दादी ध्यान से देख रही हैं और बाबा ने कहा देखो, तो जैसे उसको देखा तो कहती ये सब क्या है। बाबा ने कहा ध्यान से देखो। बाबा ने कहा कि आज सब अच्छे उन वरदानों की माला बना करके खुशी से प्रकट कर रहे हैं। कई परिवार आपस में मिलकर के दैवी परिवार के गुलदस्ते में ऐड हो गए हैं और चारों ही तरफ सेवा कर रहे हैं। ऐसे बाबा उनको प्यार से बता भी रहे थे। फिर भी दादी तो न्यारी और प्यारी थी। मैंने कहा बाबा दादी क्या कर रही है, कहा दादी से पूछो। दादी शांत, दादी कहती हैं कि जो बाबा कराते हैं वो हम करते हैं, कोई संकल्प नहीं करते, बाबा करा रहे हैं, हम सब करते चले जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर में क्या देखती हूँ कि चंद्रमणी दादी एकदम हाथ में झंडा लिए हुए बिल्कुल ऐसी खड़ी थी, बिल्कुल जैसे कोई शेरनी हो। बाबा ने कहा देखो बाबा के कार्य के अंदर हर एक महारथी का विशेष योगदान रहा है और इस बच्ची ने भी बाबा के हर कार्य को एकदम हिम्मत और ताकत बाबा को साथी बनाकर एकदम सबको खड़ा करके संग लेकर के चली है। तो इस बच्ची ने भी बहुत विशेष कार्य किए हैं। फिर बाबा ने दोनों को भोग स्वीकार कराया और दोनों दादियों ने सबको स्वीकार कराया। लेकिन स्वीकार कराने के बाद बाबा ने दादी को कहा कुछ कहो। दादी कहती बाबा आप कहो। फिर भी बाबा ने कहा दादी कहो। तो कहा कि बाबा हमेशा कहते हैं, हमेशा बाबा को अपना साथी बना करके और हर कार्य करते समय निमित हल्का निर्माण चित होकर के चले तो सेवा करते हुए हर प्रकार से सफलता अनुभव करेंगे और भी बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। और चंद्रमणि दादी कहती है बस बाबा ही मेरा है, मैं बाबा की हूँ, इस निश्चय पर ही सबको चलना है। फिर दोनों दादियों ने, बाबा ने भी सभी मधुबन निवासी, ज्ञानेश्वर निवासी, शांतिश्वर निवासी और जो उनके सेवा साथी रहे उनको भी बहुत याद प्यार दिया। और बाबा ने कहा कि बाबा और एडवांस पार्टी वाले बच्चों को देख करके बहुत खुश होते हैं। फिर बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए सबको फिर से ही वही दादी के सामने, बाप दादा के सामने, और सब खुशी में नाच करके तालियां बजा रहे थे, इतना खुशी में झूम रहे थे। बाबा ने कहा सभी को एक ही संकल्प ध्यान में रखना है, हर स्थान हर परिस्थिति में कभी भी अपनी खुशी को खत्म नहीं करना है, बाबा साथ है, खुशी में रहे। फिर सबको याद दिया ओम शांति।